Ladies and gentlemen, good day, and welcome to the Q3 FY23 results conference call of Pravega Limited, hosted by Kirin Advisors Private Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Sumit Maru from Kirin Advisors Private Limited. Thank you, and over to you, sir.
Thank you. Good evening, everyone. I would like to welcome Mr. Vishnu Patel, Chairman of Pravega Limited, Mr. Prolina Varada, Executive Director, Mr. Keyur Pakshi, Director, and Mr. Mukesh Chaudhary, Company Secretary. As this is the first call from the company, we will have brief introduction about the business model of the company, then Q3 result highlights, and followed by Q&A. Now, I hand over call to Ms. Prolina Varada for brief introduction about the company. Over to you, ma'am.
Yeah, good evening, everyone. I welcome you all to the first conference call of Pravega Limited to discuss the quarter three ending and nine-month ending of financial year 2023 performance. As we are connecting first time, I would like to start by giving you a brief introduction about the company. Pravega Limited was founded in 2005, and today it is a leading company, having presence in diverse business segments like exhibition, event management, tourism, hospitality, and publication. Our core strength lies in independent and sophisticated infrastructure, expert and experienced manpower, and in-house creative design studio. Company's diverse clientele includes the state government of Gujarat, the government of Uttar Pradesh, the government of Odisha, and many more government organizations, the large-scale corporates, and renowned entrepreneurs. Pravega's wide range of portfolio includes execution of large-scale projects in India and in international markets. We have successfully executed quite a few projects in the USA, China, South Korea, Europe, Africa, and in the Middle East. Pravega has been an industry leader in events exhibition management for over 20 years and has successfully completed over 3,000 large and medium-scale events and exhibitions till date. The company has handled various prestigious projects like Sun City Narmada at Statue of Unity, Kevadia, Gujarat, Sun City Varanasi in Varanasi, Uttar Pradesh, Whiterun Resort in Ran Utsav, Kutch, Gujarat, and there are many among them. Our current projects are spread over 3 lakh square meters area with over 450 rooms capacity. Till date, we have sold over and above 50,000 rooms with satisfying client services. While coming to our future expansion plan, we have got the development, operation, and maintenance and management contract for building of a Tent City at Chakratirth Beach at Diu, a Tent City at Jampur Beach, Daman, another Tent City at Lighthouse Beach, Daman. Here, altogether, Pravega will set up 95 tents with one convention hall and a restaurant facility in each resort. The contract period will be initially for 3 years, and which may extend by another 2 years. Pravega will be starting all these resorts by April 2023. Pravega has acquired lands at 4 locations: Jowai, Rajasthan; Velavagar, Gujarat; Ranthambore, Rajasthan; and Udaipur, Rajasthan, for developing high-end hospitality projects. All these projects are expected to be operationalized by December 2023. Additionally, Pravega has also received a LOA for the Adalat Stepwell site, Ahmedabad, and has also planned another 3 resorts in Gujarat, in Kevadia, Sasan Gir, and Sivarajpur, and another resort in Kumbhalgarh, Rajasthan. All these projects are scheduled to start from April 2024. These projects are expected to cost around 90 crore, for which the company has funded this by a preferential offer of 63.87 crore, while the balance will be funded by the internal accruals. With aggressive expansion plan, we are strongly marching towards the future. So now let me take you through the financial performance of the company during the reported quarter and 9 months of financial year 2023. Pravin Limited had achieved a remarkable growth in the first 9 months ending of financial year 2023, outperforming the whole financial year 2020. While it comes to quarter three of financial year 23, the total revenue that we have generated is 28.47 crores, up by 79.85. EBITDA stands at 17.19 crores, up by 107.36%. EBITDA margin sets at 60.38%, which was earlier 52.37%. And profit after tax, it stands at 11.56 crores. The earning per share, the EPS stands at 6.01, up by 103.04%. And while I go through the 9 month ending of financial year 2023, the total revenue stands at 65.81 crore. EBITDA stands at 35.37. The EBITDA margin stands at 53.75. The profit after tax, it stands at 23.25 crore. And the EPS stands at 12.09 rupees. So now I open the floor for the question and answer session. Thank you.
Thank you. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question and answer session. Anyone wishing to ask a question, may please press star in one on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Jay from Capital PMS. Please go ahead.
Hello. Can you hear me?
Yes, Mr. Jay. Please proceed with your question.
Hi. Congratulations to the management. Very good set of numbers for the entire team. I had a few questions on, when you said that the business model and about the new properties that are coming up. I just want to know how does the management, zero down on the property and what is our right to win when we are looking at a specific property? Because we are relatively new compared to the other, hospitality players that are established in the country. So how does the management, get access to prime properties at prime areas? That was question one. And second is, how does the seasonality of the business that affects us, then what is the management, plan of action that to counter the seasonality of hospitality and the event industry? What would the management do in terms of down cycle?
Hello, members of the management team.
Yes.
Yes, sir. So we have a question. So we know the.
Hello.
Can you hear me?
Yes, ma'am. Please proceed.
Yeah. This is Prolina. Hi. Thank you for the question, Mr. Jay. I guess I pronounced your name properly.
Yes.
Yeah, you have a question that how we get access to these good location properties, right?
Yes, that's right.
Yeah, we, while I mentioned the future expansion plans, I say that one part was the dominant new project that we got through the government PPP mode. Like we apply for the tender and we get it through tendering process only and we develop it as PPP mode. And
okay.
While coming to the other properties that I said about the four locations in Rajasthan and Ahmedabad and Gujarat, Those properties we have acquired through our own, like we have acquired the lands there. We have invested there. Hello?
Yes, yes.
Yeah, okay. I think it is. It suffices your question or anything else? You
no, second question was because we have this seasonality in the business, like because we are in the events division also along with hospitality. So my question was, what does the management have in plan or in plan in place that, you know, to counter the cyclicality or the seasonality of the business? Because the events industry is not something where we have a lot of, you know, visibility compared to what you have in hospitality as a division.
Okay. When it comes to seasonality, if I say about the Ran Utsav project, if you say that Ran Utsav runs for 4 months in a year, and this, if you say this Varanasi project, because of the seasons, that rainy season causes Varanasi to shut down its business for 4 months, right? We will be operational there for 8 months. And while it comes to the event management segment, I hope there is no season for, you know, doing this event management business.
Okay.
For management also, please.
I just want to know then when you said that your business is on for 8 months at Varanasi or 4 months at Kachutta, what is happening in the property for the remaining 8 months? Do we have like a tangible setup, like a foldable setup or a movable setup that you kind of have versus a proper brick and mortar hotel that is being made? Like, if you can throw some, like what is happening at the property for the 4 months or the 8 months that is shut?
See, for this Ran Utsav, actually we have same set up over there in Ran of Kutch, where for the other 8 months we shut down the property and we have that set up over there. We have warehouses there so that we can remove those tented accommodations and store it in the storage area. The same will be applicable for Varanasi also.
Okay. So these tents are basically bought by us, is the property of the company. If they are not in lease.
Sorry, I didn't get you.
Does the company own the tents as a property, as an asset, or I was under the understanding that...
Yeah, yeah, these are all our assets only. Yes.
Okay.
XLM land, all the furniture, fixtures, tents, all the structures, whatever it lying on that land, is being transferred to warehouse after dismantling it, which we again use in the next season. So, certain resorts are of the nature where it's work for the seasonal basis, and certain resort is for full years of operation. Same way in the event industries also. In second quarter, like June to September, event business is normally at lower tune than third and fourth quarter. So event business always, हमारे को जो ज्यादा business मिलता है वो October से March महीने में मिलता है. और वो भी अगेन वी आर डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट काइंड ऑफ बिजनेस, तो जो गवर्नमेंट के टेंडर्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो भी हम लास्ट 6 महीना और फर्स्ट क्वार्टर का 1 अप्रैल महीना में हमारे को वो बिजनेस मिलता है. तो दैट इज द नॉर्मल सीजनलिटी. एंड नाउ वी आर मिटिगेटिंग द सीजनलिटी बाय वे ऑफ स्टार्टिंग न्यू रिसोर्ट. जो रिसोर्ट हमारा पूरा साल में यूज होने, मतलब ऑपरेशनल रहने वाले हैं, तो मेजर रिसोर्ट नाउ वी आर गोइंग अहेड with full years of operations.
Okay. Sir, can you give a breakup, please, agar possible ho to, ki full year wale kaun se aur part year wale kaun se rahenge?
Main aapko batau ki, jaise ki...
Yeah, yeah, sir, please continue.
Yeah. There is two resort only which is on work, which all work on seasonal basis. That is the Kutch and Varanasi. Remaining all resorts including Kevadia, एज वेल एज दमन, दीव, राजस्थान के 3-4 रिसोर्ट्स बताए गए, वेलावदर के बताए गए, जो ये साल में ऑपरेशनलाइज होने वाले, इट इज अंडर डेवलपमेंट, वो सारे फुल ईयर ऑफ ऑपरेशन वाले हैं.
ओके. एंड ये ज्यादातर रिसोर्ट दिस विल बी मीडियम टू लग्जरी और दिस विल बी मेजरली फॉर द अफोर्डेबल एंड मिडल इनकम क्लास इज वॉट वी आर टारगेटिंग.
देयर इज अ टू सेगमेंट विच वी कैन डिफाइन. कि एक जो मिडल एंड हायर मिडल क्लास के लिए है और एक हाई एंड है। वाराणसी के अंदर भी ऐसे टू टाइप ऑफ ऑप्शन इज अवेलेबल, सेम वे कच्छ दिस केवड़िया में अवेलेबल है। तो नॉर्मली मिडल और हायर मिडल सेगमेंट हमारा मेजर कस्टमर है। और हमारा लास्ट ईयर में आपको थोड़ा ब्रीफ करूं, लास्ट ईयर ARR वाज 8400 अगेनिस्ट अवर इंडस्ट्रियल 4200 रुपीज पर रूम, जस्ट फॉर योर नॉलेज।
ओके ओके सर, दैट इज ग्रेट सर। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, व्हेन यू से दैट यू कीप द टेंट्स एंड एवरीथिंग एज अ प्रॉपर्टी, सो what is the payback period for a non seasonal resort versus a full year resort, like say run of Kutch?
Very interesting question. A very interesting question. While we deciding to open new sites for a resort, we first make it feasibility study, how much tourist is coming, how is the future scope for that particular location, वो ऑल जो स्टडी करते हैं। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है टेम्पररी स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो टेंटेड रिसोर्ट्स होते हैं वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होते, टेम्पररी स्ट्रक्चर होते हैं। तो नॉर्मली हमारा पेबैक पीरियड हम 1.5 इयर्स गिन के चलते हैं, चाहे सीजन में चले या चाहे फुल साल चले, इट्स डिपेंड। सीजनल सीजन की इफेक्ट फाइनेंशियल जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके साथ ही उसको देखा जाता है। यानी कि अगर सीजन 4 महीने की है लेकिन अगर हमारा रिसोर्ट 1.5 साल के अंदर यानी कि वही 1.5 सीजन हम गिने तो जो रेवेन्यू आना चाहिए इतना हमारा कैपिटल आउटले होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर से।
ओके, तो बेसिकली यू आर सेइंग सर दैट ऑन द फीजिबिलिटी स्टडी यू विल डिसाइड वेदर टू पुट अ टेंटेड स्ट्रक्चर और टू बिल्ड अ परमानेंट।
एग्जैक्टली। सो इफ इट इज अ पेबैक पीरियड ऑफ 1.5 ईयर मैक्सिमम then only we open resorts or we bid for the same.
Okay, so 1.5 year is threshold for traveling as a company. Above that you won't generally look to open any property unless...
Yes, exactly. There's a threshold limit where we make it, we consider it as a feasible if it is a if payback period is below 1.5 year.
Okay. Okay, so that is very good as a financial discipline. Thank you. Thank you so much, sir, for answering all the questions. And all the best for the future.
Thank you. Thank you, sir.
Thank you. The next question is on the line of Avinash Gorakshekar from ProfitMark Securities. Please go ahead.
First of all, congratulations for the entire Provect team. Numbers have been extremely excellent, Vishnubhai. I have 2-3 questions just to understand, you know, for the first 9 months we did 65 crores revenue. Can we come to know what is the percentage of hospitality and exhibition in this, 65 crores? Agar aap iska thoda sa mota moti hum log ko break up denge. Or another question which I have is basically, you know, we saw the company's EBITDA margins improving significantly. In fact, I was seeing the third quarter numbers, the EBITDA margin is almost 60%. Compared to the second quarter when it was 55%. So has the company taken any price increases in quarter 3? If you can please tell us.
Revenue breakup will give by Prolina. Prolina, can you share that revenue breakup?
Sure, sir. So, good evening, Avinash, sir. While it comes to the business of Provect, we have right now having two source of income. One is from events and exhibitions. Another one from hospitality. So, coming to this 9 month and 65.81 crore turnover, we can go for like 40% from the event and exhibition segment and 60% from hospitality.
Okay. And madam, on the second question, if you could please tell.
EBITDA margin.
Ah, Vishnubhai.
EBITDA margin is...
Yeah, please.
EBITDA margin is depend upon the volume of the business always. So in the third quarter, we have done around 50% more business than the second quarter. And that's why there is a shift of EBITDA margin from 53% of the second quarter to 60% to the third quarter. That is mainly reason for that same. Because our overhead will recover more in case of volume of sales is increasing. That's why.
Okay. So basically, the prices, the sale price has not increased. You have just done a better.
Sale price has not increased. Definitely not.
Okay. Achha, one more question before I conclude. I would like to say, on the execution business, now what is the kind of outlook the management would like to share for, say, FY24? Because, in the last one or two years, hospitality business has increased the contribution significantly. But execution is also one of the strengths of Pravek. So going forward, can we expect some more traction even on the exhibition and event side, in the coming financial year? If you could share some thoughts.
Yeah. I can share one interesting thing is, due to last 2 years corona effect, the event exhibition was at a very lower tune in last 20 years Pravek history, number one. So you find lower volume of sales in event and exhibition. Number two, the events and exhibition business is depend upon government के जो project आते हैं उसके ऊपर depend रहता है. आप जानते कि हमारा main business गुजरात से आता था, तो गुजरात का अभी government का election अभी just पूरा हुआ, तो अभी कुछ ना कुछ नई events और exhibitions के जो भी scale आएंगे, उसको हम catch करने का प्रयास करेंगे. और दूसरा, जब हम tenders उसके भरते हैं, तो वो tenders के अंदर उसकी viability, उसका margin सब देख के हम काम करते हैं. और right now we have balance focus with the event and exhibition में भी हमारा focus है, same way hospitality में भी है. So we get a good opportunity, we will catch that business also.
विष्णु भाई, one last question. आपने बोला कि वाराणसी रिसोर्ट ये थोड़ा सा सीजनल रिसोर्ट है, तो ये सीजन का टाइम हम आपको हमको बता सकते हैं? और मोटा मोटी अगले साल, दैट इज फॉर नेक्स्ट फुल ईयर, व्हाट इज द काइंड ऑफ टारगेटेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? हम लोग पूरी तरह से जो भी टेंट्स हमने वाराणसी में लगाए, वो पूरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यूटिलाइज करने की टारगेट कर रहे हैं, तो ये जरा बताइए.
हाँ, हमारे जो सीजन है वो ऑफ सीजन, मतलब कि जो डिसमेंटल करते हैं वो जून में करते हैं. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और डिपेंड अपॉन द रेंज, अगर रेंज ज्यादा है तो अक्टूबर तक, यानी कि 5 महीना मैक्सिमम हमारी सीजन के अफेक्टेड, मतलब गंगा नदी के किनारे हैं, तो वहाँ अगर वाटर ड्राई हो गई है नदी, तो वहाँ हम लगाएंगे. यानी कि अक्टूबर से हमारा नॉर्मली स्टार्ट होता है ऑपरेशन, और मई तक चलता है, नंबर वन. नंबर टू, वी हैव डन देयर अराउंड 140 टेंट्स हमने ऑलरेडी लगा दिए हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज बिजनेस इन द फ्यूचर. एंड जो बिगिनिंग हुई है अभी 1 महीने की, इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स है. एंड वी विल फर्दर एक्सपांडिंग अवर बिजनेस डेवलपमेंट टीम टू हैव बिजनेस ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग काइंड ऑफ बिजनेस इन वाराणसी ऑल्सो. सो जैसे ही हमारा धीरे धीरे वो हमारी टीम है, इसमें मोबिलाइज कर कर रहे हैं हम, और इसमें हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है, अच्छा काम होगा इसमें.
इनफैक्ट थैंक यू फॉर द आंसर विष्णु भाई, एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड द कंपनी. थैंक यू.
थैंक यू.
Thank you. The next question is from the line of Shashank from Value Educator. Please go ahead.
Am I audible?
Yes.
Yeah. Firstly, many congratulations for the Pravek team for the excellent set of numbers. So my question is related to, my question is related to our upcoming projects. If you can elaborate a bit about them, about like the Daman Diu, I think you had mentioned that we have about 95 upcoming tents. So what about the Velavadar, Ranthambore, Udaipur? How many tents are we planning over there? And what is the nature of Adalat project? I think it is an area development. So can you give us some briefs about these three, four projects? And other, I think, like some projects which you said will be coming in April 2024, like Sasan Gir, Kevadia, and few more, Kumbhalgarh and all. So, like, just to get clarity about how many tents will be there, what is the seasonality over there, and if possible, what would be the revenues or something if we are expecting, that would be really helpful.
Prolina will explain this in detail. Prolina, please.
Yeah, sure, sir. First of all, while talking about the upcoming projects of Daman and Diu, as I said, 95 tents will be there. That includes the 30-35 numbers in Daman and 30 tents in Diu.
Okay.
Okay. And for Zawai, we have initially we are planning for 20 units over there in Zawai.
Okay.
We will again go in two phases, 12 in first phase and another 8 in the second phase. And for Velavada, we are planning for 12 rooms.
Okay.
For Ranthambore, we are planning for 50 rooms. And for Udaipur, we are planning for 35 rooms.
So it will be, ma'am, same setup of the tented stay?
No, no. Here, while I talk about Daman and Diu, it is called as tent city, but it will be operational throughout the year. So these are all cottages. That is, permanent structures will be there.
Okay.
And while I talk about our own properties at Zawai, Velavada, Ranthambore and Udaipur, these will be the permanent structures, building structures, having this somewhere. And somewhere glass houses we are planning. Like we plan USP based projects in all of our properties. And those will be operational throughout the year. And while talking about the Kumbhalgarh, Kevadiya, Sasangir and Sivarajpur beach project also, those will be again permanent structures running throughout the year.
So it will be, ma'am, RCC structure, because right now I think our ROC is very excellent, probably more than 50%. Because firstly, I think the land which we get is from the government, and another thing is like this hotel structure is much, I think, is much cheaper compared to a RCC or any hotel type of structure. So are we planning to have a similar payback or similar ROC in future when we are going for the land acquisition and the permanent kind of structure? So do you give any idea?
I would like to answer for that. Our major tent city is normally a temporary structure base. Only where we own the land, that is a semi-temporary structure. For Udaipur, Zawai, Ranthambore and Velavadar, that will be a semi-structure kind of structure will be lying on the our deck for own land. Thoda isme thoda civil structure bhi hota hai. बाकी का थोड़ा टेम्पररी टेंटेड स्ट्रक्चर भी होता है. सर्टेन में हम सीमेंट सिटी को सेमी टेम्पररी काइंड के आइटम्स भी इंट्रोड्यूस करके उसको कॉटेजेस में कन्वर्ट करते हैं, सो एज टू अवर आरओसी वी कैन मेंटेन. अगर मेजर इन्वेस्टमेंट पर रूम की नॉर्मल जो ट्रेडिशनल होटल बॉम्बे या अहमदाबाद जो मेट्रो सिटी में बनती है उसकी रूम की कॉस्ट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ होती है, तो वो प्रॉपर्टी हम डेवलप करने नहीं जा रहे हैं. हमें हमारा सेगमेंट पूरा अलग है. हमारा जहाँ वाइल्ड लाइफ है, जहाँ नेचर नेचर है, जहाँ रिवर का किनारा है, जहाँ सीशोर है, ऐसी जो इंटरेस्टिंग जगह होती है वहाँ ही हम प्रवेग अपनी टेंट सिटी और ये प्रोजेक्ट्स आगे लेके आती है.
और मैम, कैन यू गिव द नंबर फॉर द लाइक द लैंड विच वी एक्वायर्ड, व्हाट इज द अमाउंट विच वी स्पेंट इफ पॉसिबल टू एक्वायर द लैंड फॉर द मैम, आई एम आस्किंग अबाउट द लैंड विच वी एक्वायर्ड फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, व्हाट इज द अमाउंट फॉर द सेम, हाउ मच वी स्पेंट. आई थिंक इन एनुअल रिपोर्ट यू हैड मेंशन दैट रणथंबोर, उदयपुर, जवाई and Velavadar land are already acquired. So can you give me the amount which we spent to acquire the land?
Okay. Sir, can I have the answer, sir, on this?
Yeah. मैं आपको बताऊं कि जो ये वेलावदर है वो हमारा लैंड एंड लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट विल बी 1.5 करोड़ ऑफ दैट लैंड. क्योंकि हमारी जो लैंड है वो मेट्रो सिटी में पर्टेन नहीं करती है, उसकी वजह से लैंड कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट इज फार लोअर देन नॉर्मल लैंड कॉस्ट. सो दैट इज 1.5 करोड़. फॉर उदयपुर लैंड एंड लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट विल बी 1.6 करोड़. सेम वे फॉर दिस जवाई इट्स अराउंड 1 करोड़ रुपीज. दैट्स वे रणथंबोर इट विल बी एट 2.5 करोड़ अराउंड लैंड एंड लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटीज एंड सम alignment and balancing we need to do before doing development work. So we include that land cost, include land development cost.
Right, sir. और sir, अडालज का आप कुछ बता सकते हो कि ये अलग project है शायद, I think ये tented accommodation नहीं as far as my understanding. तो area development का आपने कुछ post किया था, क्या exactly project है, वो कब आ सकता है?
Yes,
details if can you?
That's also under development right now. That project is particularly awarded to us by Government of Gujarat for 30 years lease,
and that project is very unique project. This is exactly adjoining to the stairwell of Adalat, which is one of the historical monuments and archaeological monuments of the particularly based at Ahmedabad and between Ahmedabad and Gandhinagar. So that project is somewhat unique project of Pravek than others resource kind of project. There in that project, 10 room ka hum underwater room leke aa rahe, underwater room as well as underwater restaurant, जहाँ सी क्रिएचर आप अंदर बैठ के आप पूरा सराउंडिंग में देख सकते हैं. तो ऐसा एक यूनिक प्रोजेक्ट हम अहमदाबाद में लेके आ रहे हैं. सेम वे हम स्केटिंग रिंग आइस स्केटिंग रिंग हम बनाने जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि हमारे अहमदाबाद और गांधीनगर और कलोल सिटी के आसपास अराउंड 1.25 करोड़ पब्लिक रहती है. तो उसके एंटरटेनमेंट के लिए एक अच्छा लोकेशन है एग्जैक्टली ऑन द एजी रोड. सो वी वॉन्ट टू कैच दैट मास, मतलब जो पब्लिक अवेलेबल है वहाँ एंटरटेनमेंट का जो एवेन्यू नहीं है, तो उसको हम आगे ले जा रहे हैं. सेम वे जैसे कि मैंने आपको बताया आर्कियोलॉजिकल साइट अडालत स्टेशन इज ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, तो वहाँ हम कोई इवेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजिक रिस्ट्रिक्शन. हम उसकी एग्जैक्टली रिप्लिका कॉपी बना के हमारी ये जो जगह है 30,000 स्क्वायर मीटर जगह है, वहाँ हम एक एम्पी थिएटर बनाने जा रहे हैं जो एग्जैक्टली उसकी कॉपी होगी, जहाँ बर्थडे एनिवर्सरी या कोई भी इवेंट पार्टी मैरिज जो भी करना है तो वो पर्टिकुलर इवेंट वहाँ भी कर सकेंगे. और एक झील है तो झील के किनारे भी एक रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं. तो काफी अच्छा खासा इसमें हमारा टूरिज्म एंगल से आगे डेवलप करने जा रहे हैं अदालत में.
ओवर टू यू सर. तो सर ये पीपीपी मॉडल है, इसमें लैंड जो है वो हमें गवर्नमेंट से मिलने वाली है या कैसे?
एक्जेक्टली इट इज अ पीपीपी मॉडल विच अवॉर्डेड टू अस फॉर 30 इयर्स. वी हैव टू पे रेंट ऑन इट.
ओके ओके. और ये कब तक ऑपरेशन हो जाएगा सर?
वी आर प्लानिंग टू ऑपरेशनलाइज बिफोर मार्च 24. मे बी दिसंबर में भी हो सकता है, बट सर्टेन प्लस माइनस गिन सकते हैं आप.
करेक्ट. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर वाराणसी टेंट सिटी रिलेटेड है. आई थिंक आपने 140 टेंट्स अभी बोला, उसमें शायद कुछ 82 एंड प्लस 68 ऐसा कुछ.
यस यस
शायद. तो वो जो एडिशनल नंबर थे 1 जनवरी तक आने वाले थे, ऑलरेडी वो आ चुके हैं और आर वी इन प्रोग्रेस.
ऑलरेडी 13 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन हो गया. राइट नाउ इट इज ऑपरेशनलाइज. लेकिन इस बार ज्यादा मानसून की वजह से हमारे को पोजीशन दिसंबर में दिया गया, तो उसका ऑपरेशनलाइज हमारे को जल्दी करना था. तो हमने आप बोल रहे ऐसे 82 या जो भी है वो टेंट हमने ऑलरेडी वी हैव मेड इट टू ऑपरेशन, और अभी आगे का एक्सपांशन उसका चल रहा है, डेवलपमेंट जो भी है वो तो हम आगे कर रहे हैं. यानी कि इन नेक्स्ट ईयर बिफोर वी आर प्लानिंग फॉर 200 टेंट्स एट वाराणसी अलोंग विद द बिग 900 पीपल. क्या बोला कॉन्फ्रेंस कम एक हॉल बनाने का प्लान है वहाँ.
ओके. और सर इसका जो हमें टेंडर मिला है वो टोटल 300 टेंट्स का है राइट? मैक्सिमम
हमें सर एक्चुअली 20 हेक्टर एरिया मिला हुआ है. 10 हेक्टर एरिया की दो प्लॉट हमें मिले हुए हैं वहाँ पे वाराणसी में.
ओके.
वी गॉट टू प्लॉट एंड वी कैन डेवलप मोर देन 300 टेंट्स ऑल्सो. देर इज नो लिमिट फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया बिकॉज इट्स अ ह्यूज स्पेस. इट वॉज फर्स्ट ईयर वी डेवलप्ड ओनली 140 टेंट्स. 82 आर ऑपरेशनल नाउ एंड बाकी का जो रेस्ट है दोज विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 20th February. सो फॉर नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग फॉर मोर टेंट्स.
ओके अंडरस्टूड. मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट इज लाइक द रिसीवेबल अमाउंट आई वाज चेकिंग इन अ बैलेंस शीट. तो फर्स्ट हाफ में कुछ लगभग 23.47 करोड़ का रिसीवेबल्स है. सो व्हाट इज दिस नेचर ऑफ रिसीवेबल्स एंड 9 मंथ का नंबर इफ यू कैन शेयर विद मी. एंड हॉस्पिटलिटी बिजनेस में जनरली कितना ज्यादा रिसीवेबल में भी जनरली नहीं होता है, बट आई थिंक इट माइट बी ड्यू टू द एग्जीबिशन ऑफ द इवेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट.
सब बिजनेस है मार्च में आता है. मार्च महीने के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, तो सारे जो बिलिंग्स है वो मार्च में रेज होते हैं. दैट्स व्हाई ऑलवेज मार्च बैलेंस शीट और जून बैलेंस शीट के बिटवीन आपको ज्यादा रिसीवेबल्स मिलेंगे देखने को.
ओके तो सर इसमें अभी 9 मंथ का नंबर आप कुछ शेयर कर सकते हो, या हिस्टोरिकली इसमें कुछ बैड डेट हुआ है गवर्नमेंट एंड से या रिसीवेबल्स में एग्जीबिशंस में?
आई कैन शेयर,
आई कैन शेयर यू सेपरेटली बिकॉज़ आई डोंट हैव इट हैंडी.
ओके
इट्स ओके इफ आई शेयर यू.
या या श्योर, बट नॉट अ मेजर बैड डेट इज हैपनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट साइड नॉर्मली, बट देयर मे बी द डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट और अवर प्राइसिंग एंड देयर प्राइसिंग, देयर मे बी सम discount kind of things happening. So no question of measure any bad debt to community debt in this 20 years history. There in total 20 years history, I can say that the total bad debt or discount after billing not exceeding 2 crore rupees, 2 or 3 crore rupees in total history of private.
Understood. Can I ask more questions I have, or should I join back in? Hello.
Yes, Mr.
Shah. Can I have some yes, more questions?
Please proceed.
Yeah, thank you, ma'am. Thank you for the opportunity. So, sir, before I think 1 or 2 months, आपने कुछ किसी के बारे में अपडेट किया था कि कुछ सफारीज रिलेटेड वी आर गोइंग टू ओपन ओवर देयर. सो कुछ बता सकते हैं उसके रिलेटेड कि लाइक व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट जेट एंड वो कब तक शुरू हो सकता है एंड व्हाट इज द पोटेंशियल?
जरा मैं समझा नहीं आपकी बात. सफारी मतलब?
I will exactly. I think in Kenya I am saying you have updated to exchanges about starting one subsidiary.
We have incorporated one subsidiary at Kenya. We are planning in future. Still there is perfectly any land is acquired, but we have decided in future we will start one resort at Masai Mara Forest. That's why that subsidiary is we have incorporated. Before some days.
Okay. So any like rough timelines? कब तक वो शुरू हो सकता है या क्या?
Still the management has not decided. But we are strategically we have opened our bank accounts and opened one company. Once we get good opportunity there in terms of acquisition of the land in the between forest and the land is we found to be ideal and viable for making this kind of resort. In that case, we will catch that opportunity. That's why we make our company ready, structure ready, so we can speed up that process at appropriate time.
Right. Okay, sir. And specifically in industry, का आप कुछ बता सकते हो कि ये जो tent city का concept government of India ने लाया है, where he have one at Narmada, then another at Ranusav, and third one at Varanasi. So what are the other cities which are planned in future? Yeah, already or kuch cities mein hai kya? And like any understanding which you can share to investors, like how many are operational or upcoming?
Basically, do not want to start hotels like in metro or city, big city. That is our fundamental difference between hospitality company. So you can't compare that hospitality companies, ROC and all other financial parameter with company like Praveg. We are basically, we have a focus to start some good eco-tourism system in India. And that's why we are selecting natural places, seashore, rivers, as well as special the places of special importance like a Statue of Unity, Varanasi, religious city of the India. So aise jo places available hai, aise place aise location mein Praveg is eager to start this kind of resorts come tent city kind of project with unique USP. Like in Udaipur we have glass houses, we have purchased mountain, entire mountain. On top of mountain, we are planning glass resorts where you can, on the top of that, you can find a reception and dining area. And in surrounding of that mountain, there will be a glass structure. Our guests can enjoy the entire sky during night time with all the is their hobby to stargazing. So, aise logo ke liye ek achhe achhe location hum dene ja rahe hain. तो इसमें अनेक प्रपोजिशन से हमारी क्रिएटिव स्टूडियो इज वर्किंग ऑन इट. तो वहां हमने ग्लास रिसोर्ट्स बनाए हैं. जवाई के अंदर हम केव्स बना रहे हैं.
ओके
केव्स रहेगा, तो केव्स हम डिजाइन करने जा रहे हैं. जैसे कि हमारा अदालत है तो अंडर वाटर रूम्स है एंड अंडर वाटर रेस्टोरेंट्स है. ऐसी तरह रणथंभौर में कुछ अनेक आएगा. ऐसी तरह हम दूसरी जगह पे ऐसा एक
इसको एक एक्सपेरियंशियल अलग अलग हट बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे एक इकोसिस्टम इंडिया में हम चाहते हैं कि एवरी ईयर वी आर वी कैन एक्सपांड दिस काइंड ऑफ रिसोर्ट। तो 10 रिसोर्ट के आसपास हम एवरी ईयर पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड एंड ऑपर्चुनिटी।
Right. I think you all are doing fantastic. It is a very unique model, keeping in mind the financial parameters of ROC and what the returns are we getting from the invested capital. So that is a like a fantastic, I think, the thing you all achieved. Many congratulations for that. Lina, मुझे कुछ numbers चाहिए थे ये quarters के, तो can you share about the revenue occupancy and average room rate?
Mr. Shashank, can you speak a little closer to the phone?
Am I audible, ma'am? No.
Yes.
Yeah.
Probably, ma'am. I want some numbers for this quarter and kuch historical numbers if you have them handy, or otherwise I will get back to you later. So Narmada City and runoff Kutch ka quarter 3 ka revenue occupancy and average room rate if you can share.
मैं आपको generally share करूँ इसके बारे में। जो केवड़िया है वो हमारा ऑक्यूपेंसी लेवल 30-35% का है, गेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अदर देन कॉन्फ्रेंस बिजनेस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा वहाँ केवड़िया के अंदर छोटे मोटे मिला के काफी बैंक्वेट हॉल बनाए हुए हैं, तो हमारी एक रेवेन्यू अदर देन गेस्ट की ये है कि कॉन्फ्रेंस की जाती है, जैसे आपको ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जजेस की एक कॉन्फ्रेंस हुई, लोकसभा के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स की कॉन्फ्रेंस हुई, तो ऐसी अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती रहती है वहाँ, वो बिजनेस अलग है उसके अलावा। लेकिन जो गेस्ट है वो पर्टिकुलरली हम गिन सकते हैं कि रूम ऑक्यूपेंसी लेवल इज 35%।
दैट इज अवर प्रवेग एजम्पशन कि कोई भी रिसोर्ट में अगर 35% हम अचीव करते हैं ईयरली में, बात कर रहा हूँ नॉट सीजनली, ईयरली रिसोर्ट के अंदर। अगर हम
मिस्टर विष्णु पटेल सर कैन यू स्पीक अ लिटिल मोर क्लोजर टू द माइक,
योर
वॉइस इज साउंडिंग वेरी सॉफ्ट।
ओके, तो मोटा मोटू 35% हमारा केवड़िया परफॉर्म कर रहा है ऑक्यूपेंसी में।
ओके,
कच्छ के अंदर हमारा बिजनेस है और सीजन में काफी पब्लिक का रस रहता है, तो वहाँ 65% ऑक्यूपेंसी लेवल है हमारा कच्छ का।
ओके,
सेम वे स्टार्टिंग अप विद द गुड नंबर, वो भी अच्छा अभी परफॉर्म हमने जो एक्सपेक्टेशन किया था वो लाइन पे आगे बढ़ रहा है, भले 25 days का एक्सपीरियंस है बट इट्स गोइंग गुड।
राइट राइट, और सर ये ईयरली आप कुछ नंबर शेयर कर सकते कच्छ के अगर वाराणसी के लिए हम ईयरली कितना रेंट पे करते हैं गवर्नमेंट के लिए इफ पॉसिबल?
हाँ जी, कच्छ के अंदर हम 1.25 करोड़ रुपया रेंट देते हैं, वाराणसी के अंदर 2.5 करोड़ रेंट देते हैं, अडालज के अंदर हम 50 लाख रुपया रेंट देने वाले, ईयरली मैं बात कर रहा हूँ सारी फिगर।
राइट, और सर केवड़िया का कितना है? नर्मदा
केवड़िया का अब तक नहीं था क्योंकि वो वायबिलिटी गैप फंडिंग वाला था, तो अब तक नहीं था, बट अभी उसके जैसे टर्म्स कम होगा तो आगे चालू हो जाएगा।
ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इफ आई हैव एनी क्वेश्चन आई विल जॉइन बैक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू। रिमाइंडर टू द पार्टिसिपेंट्स, एनीवन विशिंग टू आस्क अ क्वेश्चन मे प्लीज प्रेस स्टार इन वन। The next question is on the line of Yashwanti Khatkar, an individual investor. Please go ahead.
This is Yashwanti Khatkar. Sir, most of my questions are answered. Just want to understand.
Sorry to interrupt, ma'am. You're sounding very soft. Can you come a little more closer to the mic?
I just want to understand, if you wanted to create any structure like the Narmada tent city with a tent occupancy of around 110, so what is an approximate cost normally we incur when the land is already given us to the government?
Yeah. For temporary structure, our benchmark cost is 15 lakh rupees per tent. That include common facilities like swimming pool, dining area, or whatever guest facilities basically required to be done there. But okay. And for semi-temporary structure, which is not a perfectly a civil structure or perfectly a tent structure, that cost, benchmark cost per acre is assuming to be 30 lakh rupees per room.
50 lakh?
30.
30. Okay. And then also, as we are receiving the land from the government, so I believe that we need to pay some royalty towards that, right? Hello?
I couldn't get you.
And do we have to pay royalty when the land is received from the government when we create the structure? An audio?
No.
Sorry to interrupt, ma'am. Your audio is sounding very muffled.
No, I just wanted to check that do we have to pay any royalty as we are getting the land from government when we create the structure?
Yes, ma'am. Yes, we pay royalty to the government.
And what is the cost? What is the rate at which? What is kind of a payment arrangement we have to do? And what kind of a royalty we need to pay?
It's a yearly.
Yeah. Please, sir.
It's a yearly. Just explained before some while. Our Varanasi, we are paying 2.5 yearly. Adalaji is 0.5 crore. Then after Kutch, we are paying 1.25 crore yearly royalty to the government. That depend upon.
Okay.
So depend it, upon it property is, and.
It is basically a lump sum amount which we need to pay, right?
Yes, exactly. Exactly. It is a lump sum royalty decided at the time of tender.
Okay. So, all these sums get decided at the time of tender.
Yeah.
Okay, sir. Thank you so much.
Thank you.
Yeah.
Thank you. The next question is on the line of Uday Kumar, an individual investor. Please go ahead.
Yeah. Good evening, sir. Can you hear me?
Yes.
Sorry to interrupt. Mr. Uday Kumar, may we request you to switch to the handset mode from the speaker mode?
Yeah, ma'am. Is it okay now?
Much better, sir. Thank you.
Yeah. So, Vishwabhai, superb numbers. What Praveen means, we understand now accelerated growth, right? That is the meaning of acceleration in Gujarati is a Praveen. My question is, so we are just, leaving our name. My question is, now, see, by FY25, shall we be reaching around 200 crore turnover? I understand 60% EBITDA we will maintain from all the discussion that I have heard of so far.
Yes, EBITDA is always depend upon how much occupancy we get from different resorts. So yeah. How at the end of the year product mix is there, it's depend upon that. So if there is a 10 resorts, some resorts is performing above line, some is somewhat below line, but the average assumed to be a 50-50 EBITDA margin. Right now in quarter three, you not always presume that we get always a 60% or 61% EBITDA margin because the quarter three was very at high peak. So our overhead absorption of overhead leading to more EBITDA margin, but you may presume to be a 50% EBITDA margin normally.
Fine. And on the top line growth, is it possible by FY25 we touch 200 crore or more?
See, I can't give a number like this, but just explain before to someone, I'm replying to the someone query, that we are planning our resorts with maximum payback period must not be a more than 1.5 years of our investment. So accordingly, you have to analyze and figure out the numbers of sales.
Okay.
Because this year we are doing capital investment of 90 plus crore for these 9 resorts, upcoming resorts. Among them, one we have concluded is a Varanasi. So 90 crore is our capex for this year. So if you understand with this payback period, there must be a 60 crore rupees turnover which add by these 9 resorts in the next year. So past record with this 60 crore, you may analyze accordingly.
Okay, fine. And any breakup possible for food and beverages kind of revenue and a margin understanding onto that?
In question, I would like to say focus about food and beverages. That is, our all resorts are at destination far from city and far from other alternative available to our guests. That's why our room rent include food and beverages charges to that kind of destination. Wherever we are giving two packages, one is with the F&B and one is with the breakfast option only. So verbally, you may include ERR include F&B in
okay.
case of project.
Okay. Okay, fine. Thank you. Thank you very much.
Haji, thank you.
Thank you. The next question is from the line of Dharmik Shah, an individual investor. Please go ahead.
Hi. One of my question is already answered on the Kenya thing. Second question I wanted to ask was, has Pravik bid for this G20 summit event, which is up later this year?
Pravina, excellent. Our May month booking.
Yeah, please, sir. Please. Can I hear again?
Hello. I had two questions. One was on the Kenya, but I think that was already answered.
Okay.
Second is this government G20 conference, which is coming up in later this year. So that will be a good marketing this platform for Pravik. So is Pravik bidding for this G20 summit event management?
So G20 bidding process, I think it was, if you talk about the event management part, no, event management part, we had not participated because it came earlier, I think 6 months earlier only. But yes, okay. we have two G20 summits that are in talk at our properties, which are not confirmed yet. One is confirmed and another is in process, like conference management. While I speak about the 10 city Narmada and Varanasi projects, we are yet to get confirmation from the G20 team for going for a G20 meet there.
Yeah, okay. So we may get two G20, one at Kevadia and one at Varanasi. So it's under, we right now not get confirmation, but it will be, maybe.
Okay. And on the Kenya thing, sir, you already answered this actually. But as in, how aggressive is the company looking to expand into this African? Like Kenya is just one country. And when you speak about that, you specialize in wildlife and closer to nature kind of projects. So Africa as a continent as a whole, do you think is it a big opportunity for the company going forward?
Hello.
Yeah, am I audible?
Yeah, you are audible. Yeah, I can listen you.
Yeah.
Hello.
So, अपना जो विष्णु वाइल्ड लाइफ और नेचर वगैरह से क्लोज से जो कंपनी का कनेक्ट है इतना वहाँ पे जा रहे प्रोजेक्ट सो अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज है साथ में केनिया का जो इनकॉर्पोरेशन किया है वो तो बहुत आपका सिनर्जीज मैच होता है कि जहाँ पे आपका एक्सपर्टीज भी है कि आप वो फील्ड में डोमिनेट करते हो तो ये बाकी जो भी वहाँ पे तो बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे जैसा वाइल्ड लाइफ और क्लोजर टू नेचर और दुनिया भर के लोग आते हैं टेंट वगैरह तो वहाँ पे काफी हिट मॉडल हो सकता है तो इसमें आपका अग्रेशन प्लान कुछ है सब बड़ा
मैं आपको बता देखो आपके डिश में जितने भी व्यंजन है आपको जो पसंद आएगा पहले लेंगे ऑल्सो इन केस ऑफ प्रोडक्ट इंडिया के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटी है अभी हमारे पास 9 रिसोर्ट इज ऑलरेडी कन्फर्म विच इज अंडर डेवलपमेंट एंड मे बी ड्यूरिंग दिस ईयर वी गेट मोर 2-3 असाइनमेंट बिकॉज वी गेट अ टेंडर गवर्नमेंट का आता है और उसके बाद हम बीड करते हैं और उसको चालू करते हैं 3 महीने का या 4 महीने का प्रोसेस होता है ऑपरेशनलाइज होने में 120 डेज का ऑपरेशनलाइज पीरियड होता है फ्रॉम द बीडिंग टू ऑपरेशन तो ये साल में भी 1-2 प्रोजेक्ट और भी मिल सकते हैं प्रवेक को तो काफी प्रोजेक्ट इस साल के ऑपरेशन के लिए है हमारे पास और आप जानते हैं 12 रिसोर्ट्स बनाना इसके लिए भी सारी हमारी टीम लगती है तो हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं कैसा लोकेशन है कैसा पेबैक है कैसे टूरिज्म के हिसाब से या हमारे को उसका रिस्पॉन्स रहेगा हमारे को अच्छा जहां भी लगता है तो हमारी वहां नजर होती है तो हम प्रेजेंटली दिस ईयर वी आर फोकसिंग फॉर दिस इंडिया 9-12 रिसोर्ट्स next year maybe we are very aggressive for the project of like Masai also. So we will do one resource overseas to study how we have experience overseas also. So ekad resource hum karenge, usko dekhenge ki kaisa response hai, ekad do saal ka experience lagega wahan, uske baad hum wahan bhi aggressive banenge. Lekin right now we get good project available in India. So right. India ke andar abhi 50 opportunity available hai place wise, jisme aap Sikkim hai, then after sister yani ki northeast hai, certain part of Uttar Pradesh hai. So right. dusre jo bhi avenue available hai pehle usko catch karenge. Aur same way maine aapko pehle bola ki dusri opportunity dusri country mein milegi, so they are, we are also eager to catch that opportunity also.
Yeah, right. Thank you, Vishnu.
Yeah.
Thank you. The next question is from the line of Shashank from Value Educator. Please go ahead.
Yeah, thank you for the opportunity again. So, sir, ये मैंने annual report में देखा हमारा कुछ Australia में एक subsidiary है, तो उसके related कुछ planned है currently और या वो आगे जाके कुछ होगा या anything on that side?
बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की सब्सिडरी है इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस के हिसाब से. अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया इंडियन कम्युनिटी और ओवर देयर और इंडिया की कोई अपॉर्चुनिटी वहां है, तो ऐसे केस के अंदर हमने ये कंपनी बना के रखी होती है, तो कुछ काम करना है तो हम इमीडिएटली मोबिलाइज कर सके.
ओके,
देयर इज नो एनी फोकस फॉर ऑस्ट्रेलियन काइंड ऑफ, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कोई बिजनेस का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो इट्स only for opportunity, if we get, we can with this procedure to incorporate company, opening up the bank account like that. So that's only we can check.
Okay. और सर अभी और कुछ गवर्नमेंट के कुछ टेंडर्स चल रहे हैं या कुछ आप बता सकते हो कि like are we participating in any future tenders where these tented structures are there from the government's end apart from whatever you have mentioned?
So, अभी तो जो भी टेंडर आते हैं वो हम भरते हैं. फिलहाल तो इतने कोई खास नहीं है.
ओके सर,
लेकिन आएंगे तो उसके सामने हमारी टीम उसको अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको अपॉर्चुनिटी को कैच करेगी.
ओके. और आप सर कुछ एस्पिरेशनल कुछ गाइडेंस या कुछ बता सकते हो कि लाइक अभी आपने 25 तक आई थिंक 10 रिसोर्स का प्लान किया था जो एनुअल रिपोर्ट में दिया था, तो एवरी ईयर हमारा आगे जाके कैसे प्लान हो सकता है नेक्स्ट 3-4-5 साल के लिए? इफ यू कैन शेयर.
यस, टोल्ड यू बिफोर, ये साल का हमारा 10 रिसोर्स 9 रिसोर्स का ऑलरेडी प्लान क्रिस्टलाइज हो चुका है और मे बी एट द एंड ऑफ द ईयर वी मे गेट 1-2 मोर बाय वे ऑफ पीपीपी मोर. इसमें से हमारे 4 या 5 प्रोजेक्ट हमारे खुद के लैंड पे हैं 10 में से, बाकी के 5 पीपीपी मोड गए हैं. हमने ऐसा एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन लिया, we will not be a one state specific, we have presence in all state wherever possible, and one our total resort will not be in the one state. So 20% se zyada ek state mein hum resorts nahi karne wale. Same way jo bhi resorts banenge isme 40% hamari khud ki land pe banenge. Ye proposition ko dhyan mein rakhte hue aage hum badh rahe hain, aur same way next year also we are planning to have 9 to 10 resorts. So it's depend upon opportunity obviously, but we are trying to catch every year. हमारी capacity जो development की capacity है उसको हम बढ़ा के अभी 10 से 12 की है, तो same way 24, 25, 26 until we get opportunity like this, तो उसको हम आगे develop हर साल करने जा रहे हैं.
Right, because sir आपके जो margins और आपने जो payback period बताया है that is very very good. So are we going to have like focus on similar opportunities जहाँ पे 1.5 साल के आसपास payback रहेगा है?
Exactly.
Because
पहले तो अभी हमारे को जहाँ मिलता है वहाँ maximum payback मिलता है, वहाँ जल्दी हम aggressive होके करते हैं. जहाँ लगेगा कि उसके बाद opportunity थोड़ी plus minus होने जा रही है future में 27, 28 में या 29 में 30 में जब भी, तो तब हम सोचेंगे कि best proposition क्या है. तब हमारा जो set of standard है 1.5 years का, we may give relaxation to that, because up to 3 or 3.5 years we understand ki acha proposition hai, to usko dekhte hue aage decision hamara board lega.
Right, sir. Because any asset which is getting like a payback of 2 to 3 years is an excellent business, because it will throw a lot of cash if you think in next 4 or 5 years.
Yeah. That's why our management is very eager to catch a good business first, and it's a question of opportunity. तो जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी ऐसी हमारी बोर्ड रिएक्ट करके उसके अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट डिसीजन
आएंगे। राइट। और मेरा सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो अपकमिंग 24 के प्रोजेक्ट से उनका लैंड कॉस्ट कुछ आप बता सकते हो क्या? शासनगीर, कुंभलगढ़ एंड
ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दैट अवर टेम्पररी स्ट्रक्चर सेइंग 15 लाख रुपीज पर रूम बजट एंड फॉर टेम्पररी स्ट्रक्चर 30 रुपीज बजट इन 24-25 ऑल्सो that is our board benchmark budget. That if in future also, जो भी 24 में भी बनेंगे, वो एक guideline को ध्यान में रखते हुए बनेंगे. That does not include land cost. I am making clarity now.
So we are not going to acquire any land, or are we going to acquire the land over there?
Already stated. Out of that total projection of our resort, number of resorts जितने बनेंगे, इसमें 40% resorts हम अपनी land पे बनाना चाहते हैं.
Okay,
60% will be lease or government lease land.
Okay, sir. Okay, thank you very much.
Thank you. A reminder to the participants, anyone wishing to ask a question, may please press star in one. If there are no further questions, I now hand the conference over to Mr. Sumit Maru for his closing comments.
Thank you everyone for joining the conference call of PowerEgg Limited. If you have any queries, you can write us at research@kirinadvisors.com. Once more, thank you everyone for joining the conference.
Thank you so much.
Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of Kirin Advisors Private Limited, that concludes this conference call. We thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.